أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه. آج کامیاب فیملی کی چھٹی نشست ہے, سکسٹھ کلاس ہے, اور اس مودت کو جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بڑھے گی, گرو کرے گی, شدید ہوگی, اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ہمیں اپلائی کرنی چاہیے, ان پہ کام کرنا چاہیے تاکہ مودت زیادہ سے زیادہ ہو اور بڑھے. لاسٹ کلاس میں جو ہماری گفتگو تھی وہ اس بات پر تھی کہ درگزر کرنا چاہیے, فگیونیس ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان, ایک دوسرے کو فگیو کریں تاکہ مودت پیدا ہو. سورہ تغابن کی 14 نمبر کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس آیت کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ پہلے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں, زیادہ زیادہ بیویاں ہوتی تھیں, بچے ہوتے تھے, لوگ ایمان لے کر آتے تھے, تو ان کے بعض زوجات یا ان کے اولاد اپنے والد کے ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے اور ان کے لیے رکاوٹیں بنتے تھے. اور بعض لوگ اس آیت کے حوالے سے جو تفاصیل ہیں وہ آنے والے زمانے میں اس طرح سے ہے کہ شوہر کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں بعض عورتیں, ان سے تقاضا کرتی ہیں ان چیزوں کا کہ جو جائز طریقے سے نہ حاصل ہو سکتا ہو تو اس کو چاہے ناجائز طریقے سے حاصل ہونے کے لیے, چاہے اولاد کی خاطر یا بیوی کی خاطر مرد انجام دیتا ان کام. اس حوالے سے قرآن نے تین اصطلاحیں استعمال کی ہیں, ایک میں اف کو استعمال کیا ہے, ایک میں صف کو استعمال کیا اور ایک میں غفور کو استعمال کیا. اس وقت ہم نے گفتگو کی تھی کہ اف کا مطلب ہے درگزر کر دینا, درگزر کرنے سے انتقام لینے, ریونج لینے کی جو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہارمونی پیدا ہوتی ہے زندگی کے اندر, خود انسان کے اندر. پھر صف کے معنی ہم نے یہ کیے تھے کہ انسان اوور لک کر دے, جو مسٹیکس کیے ہیں وہ اوور لک کر دے, خاص طور سے شوہر کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی جو مسٹیکس کرتی ہے زندگی میں آپ اس کو اوور لک کر دیں اور ایسے جیسے اس نے نہیں کیا, تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, گرو کرے, اور آپ بھی اگر کوئی زندگی میں غلطی کرے تو وہ بھی اس کو اوور لک کرے اور زندگی آگے بڑھے. نہ صرف ہم یہ کریں بلکہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو بھی چھپا دیں, ہم اس کے گناہوں کو یا اس کے اس غلط کام کو ہم دوسروں کو نہ بتائیں کہ یہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ کام کروں اس لیے میں یہ کام کروں, یا وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں اس لیے مجھے کام کرنا پڑا, نہیں آپ اس کے عیب کو نہ بتائیں. پھر ہم نے بتایا تھا کہ امام علی نے دو حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں, یعنی شیئان لا یوزن ثوابہما العفو والعدل, یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا, اس کو ویٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ثواب کو. وہ دو چیز کیا ہے, ایک ہے عدل اور دوسری ہے اف کرنا, فگیف کرنا, معاف کر دینا. اگر جو انسان بھی اپنی زندگی میں عدل کرے گا اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا, سب کو ان کے رائٹس مل جائیں گے, سب کو ان کے حقوق مل جائیں گے, تو زندگی اچھی گزرے گی. اب اگر ہم اف بھی کر دیں ساتھ میں, معاف بھی کر دیں, تو بہت کلرفل ہو جائے گی لائف, زبردست ہو جائے گی زندگی, اس میں مزہ آ جائے گا, کیونکہ خطا اور غلطی سب سے ہوتی ہے. تو جب غلطی ہوتی ہے انسان سے, وہ گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو وہ اپسیٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو فگیو کر دیتے ہیں تو اس کو پھر سے ایک لائف مل جاتی ہے اور اس کے اندر سے پھر سے ایک انرجی آ جاتی ہے اور پھر زندگی اچھی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اگر ہم نہ کریں, معاف نہ کریں, تو اس شخص نے جس نے یہ غلطی کی ہے یا وہ تکلیف دے رہا ہے, وہ بھی اسی پشیمانی کی حالت میں, شرمندگی کی حالت میں وہ بھی جیے گا, اور اس کی بیوی بھی پھر اسی کا بدلہ لینے کے لیے یا وہ مایوسی کی حالت میں جیتی رہے گی, تو وہ زندگی کے اندر جو محبت کی گرمی ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی. اس لیے اگر دونوں ایک دوسرے کو عدل کریں گے اور ساتھ میں عفو بھی کر دیا کریں گے تو بہت اچھا انوائرمنٹ بن جائے گا. جیسے کہ آپ ایک کسی کے گھر میں جائیں ملنے کے لیے, آپ سے لوگ ملیں, آئیے بیٹھیے, کھائے پیے, بات کریں, ختم. لیکن ایک دفعہ آپ کو زبردست آپ کا ویلکم ہوتا ہے, آپ کے لیے چیزیں سجائی جاتی ہیں, آپ کے لیے मजेदार खाने बनाए जाते हैं, आपका पूरा ख्याल रखा जाता है, आपको एहसास हो जाता है कि ये घर वाले कितना ज़बरदस्त मुझे वेलकम कर रहे हैं। और भी लोग करते हैं लेकिन ये लोग बहुत अच्छे से मुझे वेलकम करते हैं। तो वो वार्म वेलकम जो होता है और उसको जो सही से आपको एंटरटेन करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि उनके अंदर एक एहसास और जज्बा एक्स्ट्रा लोगों से ज़्यादा पाया जाता है, आम लोगों से ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर रहम का जज्बा मौजूद होता है। खुदा की रहमत उन पर ये होती है कि उनके अंदर रहम का जज्बा होता है। वो फिर हम अभी आपको बताते हैं कि एक जगह ऐसी है, इमाम अली ने फरमाया कि एक इंसान ऐसा होता है कि जब आप उसको माफ़ कर दें तो वो और भी बुरा बन जाता है, यानी वो ढीठ बन जाता है। ऐसे मौक़ों पे आप कभी भी माफ़ नहीं करें, अदल करें, इंसाफ करें, लेकिन उसको फिर माफ़ नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो उसका फिर गलत फ़ायदा उठाएगा, वो उसको मिसयूज़ करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ अदल हो। अगर उसको सज़ा देनी है तो फिर उसको सज़ा दी जाए ताकि वो सही हो, वो सुधरे, वो रियलाइज़ करे। ये आपको जज करना होता है कि ये पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी है, आया मेरे माफ़ करने से ये सही हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा अपनी असली हालत में, या मेरे माफ़ करने से ये और भी मेरे सर पे चढ़ेगा, ये और मुझे तकलीफ देगा। तो ये आपको जज करना है। जिस तरह इमाम अली फरमाते हैं, जिस तरह माफ़ करने से एक अच्छा इंसान बहुत बेहतर हो सकता है, इसी तरह एक बुरे आदमी को माफ़ करने से वो बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हर जगह माफ़ी नहीं है, लेकिन एक इंसान के अंदर अगर गलती उसने कर दी है लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि उसने गलती की है, वो एडमिट करता है कि उसने गलती की है, तो फिर आप उसको माफ़ कर दें ताकि वो रिकवर करे। लेकिन आप देखते हैं कि नहीं, वो जानबूझ के माफ़ी मांगता है फिर जानबूझ के वो काम करता है, तो वहाँ भी फिर आपको माफ़ नहीं करना है, वहाँ फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो रियलाइज़ करे। क्योंकि माफ़ कर देने से दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। एक बहुत तारीखी बहुत सारे वाक़े आते हैं कि जिसमें जब माफ़ किया एक कबीले ने दूसरे कबीले को, एक सरदार ने दूसरे सरदार को, लोग ईमान ले आए, लोग आपके अच्छे अखलाक से आपसे इम्प्रेस होंगे, पर और कोई तरीका नहीं किसी को कन्विंस करने का। यह मोहब्बत के चैप्टर में जाके बताएंगे। तो जो इंसान माफ़ नहीं कर पाता, इमाम अली बताते हैं कि इंसान माफ़ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फिक्र, उसकी जो मैंटेलिटी है या उसकी जो उसका जो विजन है वो बहुत छोटा होता है, या उसका दिल बहुत उसमें कीना होता है, हेट्रेड होता है बहुत ज़्यादा, या वो बहुत हार्ड लाइफ गुजार चुका होता है, ज़िंदगी में बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं, उसके साथ कभी रहम नहीं हुआ होता ज़िंदगी में, तो वो इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाता दूसरे के लिए भी। लेकिन अगर बचपन में माँ बाप ने बच्चे की अच्छी तरबियत की हो, उसके साथ रहम किया हो, मोहब्बत की हो, उसको अच्छा विजन दिया हो, तो वो माफ़ कर दिया करेगा लोगों को। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खुद भी माफ़ नहीं कर सकेगा। एक और रीज़न जो दिया जाता है कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं। जब हम अपने कंट्रोल में नहीं होते तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं कर पाते, जानते कि अच्छी है लेकिन नहीं कर पाते। क्योंकि इस्लाम का जो पहला स्टेप है, इस्लाम का जो पहला मैसेज है, वो यही है कि आपको अपने आप को पहचानना है, आपको अपने आप को स्टडी करना है कि मैं, मेरे अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ कर लेती हूँ, क्या मैं नहीं चाहती हूँ वो नहीं करती, मैं कितना अपने कंट्रोल में हूँ। अगर आपको ये पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये एक अच्छा काम है जो मुझे करना चाहिए, ये खुदा को पसंद है, हमारे आइम्मा की ये सीरा है, ये मैं क्यों नहीं करूं। अगर मैं नहीं कर पा रही हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई चीज़ रोक रही है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं, मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हूं, तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप माफ़ कर सकें। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आपका हस्बैंड आपको माफ़ करें, वरना आप उसको माफ़ करें। जब आप दोनों दूसरे को माफ़ करेंगे तो मवद्दत डेवलप होगी, फिर वैल्यू का पता चलेगा आपको, वरना कैसे डेवलप होगी, नहीं डेवलप हो पाएगी। इसलिए फिर हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि हदीस की रोशनी में इमाम अली फरमा रहे हैं अल-अफ़्वु माल कुदरत, जब आपके पास कुदरत हो और आप माफ़ करें, जब पावर हो फिर माफ़ करें, तो वो क्या चीज़ है, जुन्नतुन मिनल अज़ाब अल्लाह सुभानहू, कि वो एक शील्ड बन जाएगा रोज़े क़यामत, एक शील्ड होगा आपके ऊपर जो आपको जहन्नुम के आग से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी में दुनिया में اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، ان تمام لوگوں کو آپ نے معاف کیا کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی؟ آپ نے معاف کیا؟ آپ نے کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ ہی کے لیے ریٹرن میں بہتر ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جہنم کی آگ آپ سے نزدیک ہونے لگے گی تو یہ آپ کے لیے شیلڈ بن جائے گی، آپ کو پروٹیکشن دے گی. کیونکہ انسان کو انسان کے ساتھ ہی دنیا میں رہنا ہے، اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان ایک ایج میں ایک اسٹیٹ میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب اپنا پاس دیکھیں گی کہ جب آپ 13-14 سال کی تھی اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں، جب آپ 17-18 کی ہوئی تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں، 20-22 سال کی ہوئی تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں، تو آپ دیکھیں گے بہت ڈفرینٹ میری فیلنگس تھیں، بہت ڈفرینٹ اپروچ تھا میرا دنیا کو دیکھنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، میرا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ تھا، اب میرا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آج کے 10 سال بعد آپ آج کی زندگی کو کچھ اور دیکھنی ہوگی. تو اگر آپ ابھی سے درگزر اور عفو کرنے کا آپ کے اندر عادت ہوگی تو آپ کی زندگی دوسروں کے ساتھ ایزی ہو جائے گی، ورنہ خود آپ کے لیے آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. آخر میں آپ اکیلی رہ جائے گی اور کوئی بھی آپ سے کلوز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اتنی ہارڈ اور اتنی سخت آپ کے ڈسپلنز ہوں گے کہ آپ کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ کی کسی سے اس طرح سے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو میں ہونا، یا یعنی سخت جملے کہنا اور لڑنا جھگڑنا آپ اس طرح سے نہیں کرتے تھے. آپ اپنی بات آرام سے سمجھاتے تھے، اگر وہ سمجھتا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو نہیں. کنوینس کرنے کی ضرور کوشش کرتے تھے صحیح بات کو، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے بلا وجہ ہی لڑ رہے ہو کسی بات پہ. اس لیے یہ سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اگر کسی کے دل میں جگہ کرنی ہے، کسی کے دل میں نرمی اور مودت پیدا کرنی ہے، تو معاف کرنے کی خصوصیت ہم میں پائی جانی چاہیے. اس کے بعد جو آج ہم جس چیز کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبت. محبت سے آگے کی اسٹیج ہے مودت، جس میں دونوں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. ابھی ہم صرف محبت کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ محبت ہوتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ جی، محبت کی جاتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے یا محبت کی جاتی ہے. محبت کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، عام سی سمپل سی جو ہم تعریف کرتے ہیں، وہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے انسان کے اندر، ایک کیفیت اور ایک حالت ہے کہ وہ چاہتا ہے اس چیز کو حاصل کرنا جو اسے پسند ہے، جو اسے اچھی لگتی ہے، اس کے لیے مفید ہوتی ہے، اس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دل میں ایک کیفیت، ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو محبت کہتے ہیں، کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دے. ایک ایسی کیفیت کہ انسان اس چیز کی خاطر اپنے کنٹرول سے اپنے آپ کو دے دے، اس کے حوالے کر دے، سامنے والے کے حوالے. ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت ہے کہ جو کہ محبت کو ڈیفائن کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے. اس کی پھر کلاسیفیکیشن ہوتی جائے گی کہ ایک دفعہ ایک انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی تعریف تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن خود ایک قوت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، فطرتاً اس کے اندر ہے. اب وہ جب مختلف شیڈس میں جاتی ہے تو وہ مختلف اس کے افیکٹس نظر آتے ہیں. تو یہاں یہ سوال تھا کہ محبت کی جاتی ہے، ہو جاتی، تو دونوں طرح سے محبت کی بھی جاتی ہے اور محبت ہو بھی جاتی ہے. لیکن زیادہ جو اثر جس کا ہے وہ یہ کہ محبت کی جاتی ہے، کیونکہ کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسی چیز سے محبت نہیں ہو سکتی جس کا آپ علم نہ رکھتی ہوں. اگر آپ کسی چیز کو نہیں جانتی، نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، تو محبت کیسے ہوگی؟ محبت ہوگی تو پھر محبت کب ہوگی؟ جب اس چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پھر سوچنا شروع کیا ہوگا، چاہے جان بوجھ کر سوچ رہی ہوں گی یا لاشعوری طور پہ سوچ رہی ہوں گی، جب اس کے بارے میں غور و فکر کریں گی تو وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی. پھر وہ محبت کی شکل اختیار کرے گی, کیونکہ وہ چیز اچھی ہوگی, آپ کو اچھی لگے گی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کو وہ چیز ملے, آپ کی اٹیچمنٹ اس سے ہو, وہ آپ سے نزدیک ہو. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مجھے محبت ہو گئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا. نہیں, محبت کے کا گراؤنڈز آپ نے تیار کیا کہ آپ نے بات سنی یا آپ ساتھ رہیں یا آپ نے اسے کمیونیکیٹ کیا یا کوئی بھی کانٹیکٹ ڈیولپ ہوا. اس کانٹیکٹ کے, اس کمیونیکیشن کے, چاہے وہ فزیکل کمیونیکیشن ہو چاہے کمیونیکیشنل کمیونیکیشن, کسی طرح کی بھی لینگویج ہو, آپ کا جب رابطہ شروع ہوا تو پھر محبت پیدا ہوئی, خود بخود نہیں ہو جاتی محبت. ہاں, ایک دفعہ انٹینشنلی انسان محبت نہیں کرتا کہ ہاں اس کو نہیں کرنا, ایک دفعہ انسان ساتھ رہتا ہے, ساتھ پلتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کو سامنے والا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر اچھے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے اور میرے لیے اس کے لیے فیلنگس ہیں دل میں. تو دونوں طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ محبت ہوتی بھی ہے اور محبت کی بھی جاتی ہے. اب میاں بیوی کی جو محبت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ محبت کا یہ عنصر جو ہے, یہ جو محبت کی شدت ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے. میاں بیوی کی محبت کے حوالے سے خود محبت کی جو ہم کلاسیفیکیشن کریں گے کہ محبت کن سورسز کے ذریعے سے ہوتی ہے, کن طریقوں سے محبت ہوتی ہے, کیونکہ محبت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بس ایک چیزے سے محبت, نہیں, محبت مختلف طرح سے ہوتی ہے. اس کو میں کلاسیفائی کرتا ہوں, اس کے اقسام ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں, ابھی بتا رہا ہوں کہ محبت کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کے فائیو سینسز سے محبت ہوتی ہے, یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا, آپ کو اچھی لگی اور آپ کو وہ چیز پسند آ گئی, اب آپ اس چیز کے بغیر نہیں رہ پا رہی. تو ایک دفعہ محبت کا میڈیم کا چینل جو ہوتا ہے وہ آپ کے فائیو سینسز ہوتے ہیں, حواس سے محبت کی جاتی ہے فائیو سینسز کے ذریعے چیزوں سے. اسی لیے ہم کبھی کہتے ہیں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, کیونکہ آپ نے دیکھا اور آپ کے سینسز میں وہ چیز آئی اور آپ کو پسند آئی اور آپ کو محبت ہو گئی, اور اسی میں شادی بھی ہو گئی, وہ لو میرج بھی ہو گئی. پھر بعد میں جب حواس سے نیچے آئے یا حواس سے اوپر گئے, عقل کی منزل پر گئے, تو آپ کو لگا کہ او یہ تو غلط, میں نے امیچورٹی کا فیصلہ تھا میرا, میں تو بس ایک لک میں پسند کر لیا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ یہ حقیقت ہے, لیکن حقیقت اس سے کچھ اور ہے. تو بعض دفعہ انسان محبت کرتا ہے, اپنے صرف سینسز کو استعمال کرتا ہے اور اس سے محبت ہو جاتی ہے حواس کے ذریعے. ایک دفعہ انسان حواس سے آگے چلا جاتا ہے اور وہ عقل کی میچورٹی سے محبت کرتا ہے, یعنی فائیو سینسز سے آگے, یعنی سکس سینس کو یوز کرتا ہے, یعنی اپنے عقل کو یوز کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, اس میں یہ خوبیاں موجود ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کی پوری وہ انالیسس کرتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے بعد وہ چیز کو پسند کرتا ہے, اس کو ریئلائز کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کرتا ہے. یہ کافی میچور محبت ہوتی ہے, اسی کی شادی بھی زیادہ سکسیزفل ہوتی ہے, یعنی وہ شادی کہ جو عقل کی بنیاد پر اس کو ایویلیویٹ کر کے, اس کے کنڈیشنز اور کرائیٹیریا اس کو میجر کر کے شادی کی جاتی ہے یا محبت کی جاتی ہے, وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو صرف ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک احساسات کے ذریعے شادی ہوتی ہے. تو محبت کی یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. جیسے بہت سارے لوگ ہیں علم سے محبت کرتے ہیں یا اسکالرس سے محبت کرتے ہیں یا علماء سے محبت کرتے ہیں, ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں. اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ انسانیت سے محبت کرتے ہیں وہ انسان سے, چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو, چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, باپ کی شکل میں ہو, وہ اس انسانیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, جس کو وہ کبھی باپ کے روپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی میاں کے روپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی روپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسے محبت کرتے ہیں. اس وقت وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ ریٹرن میں مجھے کچھ دے, وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ایک انسان ہے, یہ خدا کی مخلوق ہے, یہ باپ کے روپ میں آئے ہیں, مجھے اسے محبت کرنی ہے, اور اس کو اپنا کیا کام کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک دفعہ آپ عقل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں الہی محبت, یعنی آپ خدا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب آپ اپنے حواس اور عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنی پرفیکشن پہ لے کے جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ خدا جو کہ خالق ہے اس سے محبت ہونی چاہیے, سوری حقیقی محبت اسی سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم انسان جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہ ہم صرف اس کے پازیٹیوس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اسے محبت کر لیتے ہیں, اس سے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, پھر بعد میں جب ہمارے ہوش حواس واپس آتے ہیں پھر ہمیں اس میں عیب نظر آنے لگتے ہیں, हम कहते इसमें ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, उस वक्त कोई याद भी नजर आ रहा होता था, बल्कि लोग बुरे लग रहे होते हैं कि ये क्यों हमें कह रहे हैं कि तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये अंधी अंधे हो गए मोहब्बत में। वो इश्क का एक स्टेज होता है जिसमें अक्ल काम नहीं करती। यहाँ पे उसको नहीं डिस्कस करना, यहाँ से मोहब्बत की बात करनी है। तो मोहब्बत में एक स्टेज जो कि असल मोहब्बत है वो खुदा की ज़ात से, वो क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है और जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप सिर्फ उसी से मोहब्बत करते हैं। रियल मोहब्बत आपको उसी से होती है क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं होती, कोई इसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, वो प्योर है। इंसान क्योंकि प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, तो फिर जगह जगह हमें ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है। जब हम शादी कर लेते हैं और ज़िंदगी गुजारने लगते हैं तो हम सोचते हैं पहले ये तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद ये कैसा निकला, शादी से पहले तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद इसमें ये भी बुराई नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आप उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से देख रहे हैं और कहीं कहीं अब जिस डायमेंशन से ये नई पर्सनैलिटी जो आपके सामने आई है उसमें आपको बहुत सारे ऐप नज़र आ रहे हैं, ये हर इंसान में किस में नहीं है। इसलिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक परफेक्ट बीइंग का तसव्वुर रखना एक इनकम्प्लीट तसव्वुर है। इसलिए कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, आपको उसी इनकम्प्लीट इंसान के साथ मोहब्बत करनी है क्योंकि खुद आप भी इनकम्प्लीट हैं, आप में भी हजारों ऐप है। तो मोहब्बत जो है जो आपको डेवलप करनी है, आपको ये देखना है कि मेरी मोहब्बत किस चीज़ की पर की बुनियाद पर होती है। मैं हवास के जरिए मोहब्बत करती हूँ चीज़ों से, या मेरी मोहब्बत मेरी चीज़ें, ये चीज़ अगर चली जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा, इससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ कि वो शय है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है। या अगर मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो किस बुनियाद पर करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत तारीफ़ें करती है, वो बहुत अच्छे से मुझसे मिलती है, उसके ज़ाहिर से मैं मोहब्बत करती हूँ, या वो मेरी कदर करती है, या मेरी इज्जत करती है, मैं उसके से मोहब्बत करती हूँ। किस लिए करती हूँ मोहब्बत, किसी से भी। इसी तरह आप अपने शोहर के बारे में भी देखेंगे कि आया मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ या नहीं करती हूँ, करती हूँ तो किस रास्ते से करती हूँ, हवास से करती हूँ, अक्ल से करती हूँ, या खुदा ने कहा है कि अपने शोहर से मोहब्बत करो इसलिए मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं किस लिए करती हूँ। जिस वजह से आप मोहब्बत करती होंगी वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि आपका मामला खुदा के जरिए हो रहा है सबके साथ, आपका डायरेक्ट मामला इंसान के साथ उस तरह से नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप हवास से करती थी, जैसे बहुत सारे लोग हैं टीन एज में जब क्रश होता है तो वो फिर हवास के जरिए किसी को पसंद कर लेते हैं, फिर शादी के चंद सालों बाद वो फिर चूँकि फिजिकल आउटलुक चेंज हो जाता है इंसान के पास, शेप चेंज हो जाता है, उसके अट्रैक्शन दिन ब दिन कम होती चली जाती है, तो वो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो जिस चीज़ से मोहब्बत की थी वो अब है नहीं, क्योंकि वो हिस से की थी, सेंसेस से की थी। अगर अकल से की थी तो इंसान अगर अपने आप को डेवलप करता जा रहा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा उसका असर है, और अगर खुदा के लिए की थी तो वो तो फिर कभी ख़त्म होने वाली नहीं। इसलिए यहाँ पर आके हम यूँ जुमले को तमाम करेंगे कि कोई इंसान अगर ये कहता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है या मुझे मोहब्बत है, तो वो ये देख ले कि ये मोहब्बत किस तरह का है। ये मोहब्बत इस तरह का है कि आपने अपने वजूद को और अपने दिल को सामने वाले को दे दिया है, कैम ऑल योर्स, या नहीं आपने कहा है कि मेरी मोहब्बत तो जब तुम्हें मिलेगी जब तुम मेरा कहना मानोगे, मैं तुमसे जब मोहब्बत करूंगी जब तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करोगे, या कंडीशंस लगाना शुरू कर दिए, इतने चीज़ पूरी होगी तो इतनी मोहब्बत मिलेगी, इतनी होगी तो इतनी मोहब्बत मिलेगी। किस तरह की मोहब्बत है, किस कैटेगरी में फॉल होती है। अब हम मोहब्बत के टाइप्स की बात कर रहे हैं, अकसाम की। वो तरीका था कि इन सोर्सेज के जरिए आप मोहब्बत करती हैं, अब मोहब्बत की किस्में। तो सबसे पहले एक आम इंसान जो मोहब्बत करता है वो अपनी ज़ात से करता है। हम सब ज़ाहिरन ये समझ रहे होते हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं अपनी औलाद से, हम मोहब्बत कर रहे हैं अपने शौहर से, हम मोहब्बत फ़लाँ से कर रहे हैं। हम यूँ देख रहे होते हैं क्योंकि हम बचपन से ही सुन रहे होते हैं हमें अपने वतन से मोहब्बत है। ये सारी की सारी मोहब्बतें जो हैं ये सिमट कर आपकी ज़ात में चली जाती हैं। जब आप कहेंगी तो आप उसमें कहेंगी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, यानी मोहब्बत किससे आपको पहले अपनी ज़ात से, ये मेरे शौहर है या नहीं कहेंगी ये मेरे शौहर है, यानी आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत है, ये मेरा वतन है, ये पहले मैं है फिर वतन है, पहले मैं हूँ फिर शौहर है, पहले मैं हूँ फिर माँ बाप है, पहले वो नहीं है। ये एक असासी और एक बुनियादी चीज़ है कि जो इंसानों के अंदर पाई जाती है, कि वो पहले अपनी ज़ात को फोकस करता है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आए जो उसकी ज़ात को सपोर्ट करे, उसकी ज़ात को प्रोटेक्ट करे, उसकी ज़ात की वैल्यू को बढ़ाए, उसकी ज़ात को आगे लेके जाए, यानी नस्ल आगे बढ़े, उसको उस चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। इसलिए औलाद से इसलिए मोहब्बत होती है कि वो आपकी नस्ल को आगे लेके चल रही होती है, यानी आप अपनी सर्वाइवल आने वाली जनरेशन में देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरी नस्ल आगे बढ़ रही है। उसकी एक बड़ी वजह होती है आपको अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। और बहुत सारी औलाद ऐसी होती है कि जिससे माँ बाप बेजार हो जाते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि माँ बाप की ये मोहब्बत जो उनकी अपनी औलाद से है ये कौन सी है, हिस्सी है। अगर बेटा अच्छे काम कर रहा है, दुनिया में कामयाब हो रहा है, तो माँ सबको बता रही है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। अगर वो बुरा काम कर रहा है तो बता भी नहीं रही कि ये मेरा बेटा है। जैसे दोस्तों थे, एक दोस्त अच्छा काम कर रहा है, सब कहते हैं हाँ वो प्रेसिडेंट, वो मेरा दोस्त है, मैं हम लोग तो साथ स्कूल में पढ़ते रहे, लेकिन कोई बदमाश हो तो कहते मैं जानते ही इसको पता नहीं कौन है, और तो फौरन अपनी रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं इंसान। तो ये देखना पड़ेगा कि ये आपकी जो अपनी मोहब्बत है, सेल्फ लव जो आपका है, आपको अपनी ज़ात से जो मोहब्बत है, इसकी वजह से आप अपने शौहर से मोहब्बत कर रही हैं कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत इसलिए करती हूँ कि वो मेरे लिए इतना करते हैं, अगर वो मेरे लिए नहीं करेंगे तो मेरी मोहब्बत ही नहीं होगी उनके लिए। तो बड़ी सेल्फिश मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है ये। इसलिए ये पहली कैटेगरी की जो मोहब्बत है वो ये कि आपको अपनी ज़ात से। एक और मोहब्बत भी इंसान को इंसान से हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो इंसान दूसरों के लिए अच्छा होता है। एक इंसान नेक काम करता है, एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखता है, दुख दर्द को बांटता है, खिदमत खल्क करता है, इसलिए आपको इंसान से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर शौहर की बात नहीं हो रही, यहाँ एक आम बात है कि आपको पता है कि ये इंसान अच्छे काम करता है, सोशल वेलफेयर का काम करता है, कोई इसके पीछे इसके इंटेंशंस नहीं है कि वो पैसा कमाएगा, वो शोहरत कमाएगा, नहीं, खालिसतन कर रहा है, ऐसे इंसान से सबको मोहब्बत हो जाती है, ये भी मोहब्बत है। इसी तरह एक चीज जो ज़ातन खूबसूरत होती है, जो चीज अपनी ज़ात में खूबसूरत होगी उससे सबको मोहब्बत हो जाएगी, सबको वो अच्छी लगेगी, और हर इंसान चाहेगा कि वो उसके पास वो चीज़ आ जाए। तो इस तरह की भी मोहब्बत होती है। आपकी एक मोहब्बत इस तरह की होती है कि जिस चीज से आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, यानी जिस चीज से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। जैसे दोस्त होते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ में, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो सबसे अच्छी उन्हीं से मोहब्बत होती है आपको। इसी तरह मियाँ बीवी में अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो खुद ब खुद मोहब्बत शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक बात करने लगेंगे, एक ही तरह की गुफ्तगू करेंगे, एक ही तरह का सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि पता होगा कि वो क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, या वो क्या बोलेगी या नहीं बोलेगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंड करें, एक शौहर ये चाहता है, एक आम शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मुझे समझ ले और उस हिसाब से डिजाइन हो जाए, वहां पर वो भी ये चाह रही होती कि ये मुझे समझ ले ताकि मेरी लाइफ इनके साथ ईजी हो जाए। तो हम दोनों एक दूसरे को ये समझा रहे होते हैं कि आप मुझे समझें, जबकि हमें सामने वाले को समझना होता है। सबसे पहले मतलब में हमें उसको समझना होता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को समझें। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप उसको ऑपरेट भी कर लेंगे, जैसे कंप्यूटर है, अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, आप उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब पता होगा, तो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में कोई मुश्किल ही नहीं होगा। हालांकि मियाँ को ऑपरेट नहीं करना, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मियाँ के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारनी, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम ही चाहते हैं वो मुझे समझे, वो मेरी फीलिंग्स को फील करे, वो मुझे अंडरस्टैंड करे। तो ठीक है, मैंने कितना किया, मैं भी तो उससे पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको कितना अंडरस्टैंड किया, कितना मैं आपकी आपको फील कर पाती हूँ। इसलिए मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम फिक्री होना ज़रूरी है, एक एक आपकी मेंटल फ्रिक्वेंसी मिलना ज़रूरी है। आप कहेंगे वो ईस्ट है मैं वेस्ट हूँ, तो ठीक है, एक सेंटर पॉइंट लेके आए ज़िंदगी में, एक सेंटर पॉइंट लेके आए कि जहाँ पे आप मीट करना शुरू करें, अपने आप को डेवलप करें कि आप वहाँ लेके जाएं। एक स्टेप उसको भी ऊपर आना पड़ेगा, एक स्टेप आपको नीचे आना पड़ेगा, तब जाके आपकी फ्रिक्वेंसी बननी शुरू होगी, वरना फ्रिक्वेंसी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं मोहब्बत को इस हवाले से इतना टच कर रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, वरना इसकी डिटेल और भी है, और भी बातें की जा सकती हैं जो मैं यहाँ मोहब्बत के हवाले से नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ सब कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर मोहब्बत डेवलप हो तो पहले मोहब्बत का डेवलप होना ज़रूरी है कि वो मोहब्बत हो, और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किस तरह से मोहब्बत कर रहे हैं, कंडीशनल मोहब्बत करते हैं या अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। जिस घर में मेरा ब्रॉटअप हुआ है उस घर में मैंने मोहब्बत देखी है या नहीं देखी, मैंने अपने माँ बाप की ज़िंदगी में मोहब्बत को देखा है या नहीं, भाई बहन में मोहब्बत पाई है या नहीं। अगर पाई है देखी है तो मेरे लिए आसान है ज़िंदगी में मोहब्बत करना, अगर नहीं देखी है तो मेरे शायद मेरे लिए भी ये सख्त होगा मेरे अपनी ज़िंदगी में उस पर अप्लाई करना कि मैं कैसे मोहब्बत करूँ, कैसे की जाती है, कुर्बानी कैसे दी जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जाता है। इस हवाले से ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को डेवलप करें, इस चीज़ पर हम काम करें कि हमें जो है वो मोहब्बत को उजागर करना है, ये है मौजूद, उसको मज़ीद एनलाइटन करना है, यानी मुझे मोहब्बत करनी है, मुझे मोहब्बत होनी जाएगी। और मैं मोहब्बत जब ही कर सकता हूँ जब मैं फोकस करूँगा अपने लाइफ पार्टनर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, अगर मैं उसकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे चीज़ों को मैं याद रखूँगा कि उसके अंदर क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैं बार बार फोकस करूँगा, क्योंकि ज़हन फौरन नेगेटिव चीज़ों को दिखाएगा, जैसे ही कोई बात होगी फौरन ज़हन कहेगा उसके अंदर ये बुराई, पूरी लिस्ट आ जाएगी ये सारी बुराई है, तो फिर जब उसको फोकस करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, तो सब जगह यही लगेगा। लेकिन हमें फौरन ज़हन को सही सिखाना है, हमें सिखाना है कि तुम उसके पॉजिटिव साइड देखो, क्योंकि हमने शादी कर ली, अब हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हमें बच्चे हैं उनकी परवरिश करनी है, नेगेटिव चीज़ को देख के नहीं परवरिश हो सकती, नेगेटिव चीज़ को देख के नहीं हम नज़दीक हो सकते, तो फिर हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना पड़ेगा। पॉजिटिव को देखेंगे तो ग्राउंड्स तैयार होंगे कि हम नॉर्मल हो, वरना नॉर्मल नहीं हो सकेंगे, मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। इसके बाद का मरहला जो है, जो तीसरा मरहला चौथा मरहला जो हम गुजार रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने इज्जत की बात की, तमाम चीज़ों की बात की, वो ये है कि मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की इज्जत को सेफ रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। इज्जत करना एक चीज़ है और उनके ऐप को दूसरों को बताना एक और एक चीज़ है, यानी मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे की इज्जत को बचा कर रखें। पहले हमने बताया था कि इज्जत करें, आज हम यही बता रहे हैं कि आपको उनकी इज्जत को बचाना है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। इस आयत के ज़ेल में या इसकी शरह जो है बहुत सारी की जा चुकी हैं, बहुत मशहूर आयत है, इसलिए यहाँ सिर्फ ये इशारा करना है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में मवद्दत जो पैदा होगी वो इसी तरह होगी कि जब आप अपने शोहर के ऐप को, उसकी बुराइयों को दूसरों को नहीं बताएंगी। एक दफ़ा माफ़ करने की बात हो रही है, ये हाई क्वालिटी है कि आपने माफ़ भी कर दिया और अब आप बता भी नहीं रही हैं, तो नतीजा क्या होता है जब आप बताती नहीं हैं तो ये शख्स ये रियलाइज़ करता है कि देखो मैंने गलत काम किया, मैंने इसको दुख दिया, लेकिन इसके घर वालों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, इसके दोस्तों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि जहाँ मुझे ये पता चले किसने जाके मेरी शिकायत की है। उसका नतीजा ये होता है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी महसूस करता है कि नहीं मैंने गलती की थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी वाइफ को 5 साल तक 10 साल तक ये तकलीफ दी लेकिन इसने अपने घर वालों को नहीं बताया। उसकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, उसकी एक इमेज बढ़ जाती है घर उसके अपने मियाँ के नज़दीक, अपनी बीवी की, किसने मेरी इज्जत को बचा के रखा, मेरा उस वक्त दिमाग ख़राब था, मेरे उस वक्त गुस्सा था, मैं उस वक्त क्राइसिस में था, मुझे पता नहीं बीमारी थी, पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा था कि मैं 5 साल तक अपने सेंसेस में सही से नहीं था, तो मैंने उसको बहुत तकलीफ दी, मैंने उसको बहुत हर्ट किया लेकिन उसने घर वालों को नहीं बताया, उसने किसी दोस्त को नहीं बताया। जब भी लोग पूछे थे कैसी ज़िंदगी गुजर रही, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही, हम लोग खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यानी उसने मेरे ऐप को लोगों तक नहीं बताया, क्योंकि ये कमाल नहीं है कि हम सामने वाले को उसके ऐप बता दें। अच्छा, अभी एक वाक्य सुने हम, मियाँ बीवी ने डिसाइड शादी हुई, पहले से दूसरे को जानते थे मिले जुड़े, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने ज़िंदगी सीखा है कि इंसान को जब डेवलप करना होता है अपने आप को, तो वो जो अच्छा दोस्त होता है वो ये होता है कि वो उसको उसके ऐप बताए। इमाम अली की भी एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे ऐप बताए। तो उन्होंने पूरी अहादीसें नहीं सुनी थी, ये सुन ली थी, तूने डिसाइड किया शादी के बाद के, क्योंकि हम लोग को कमाल तक जाना है और शादी का एक मकसद ये है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे हेल्प करे ताकि मैं एक बेहतरीन इंसान बनूं और मुझे भी उसकी हेल्प करनी कि वो एक बेहतरीन इंसान बने। तो हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के ऐप बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी डिवेलप करें और आगे जाएं। शादी हुई, शुरू के महीने बहुत अच्छे गुजरे, बहुत इन्जॉय करने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ऐप बताना शुरू हो गए। अब ऐप बताते बताते लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इस हद तक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि तलाक की भाई नौबत आ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर लोग परेशान हो गए कि ये तो बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई थी और बड़ी अच्छी की पॉजिटिव बात थी कि उन्होंने सोचा था कि हम एक दूसरे को ऐप बताएंगे ताकि हम अपने आप को डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ अरसे में ये तलाक की बात हो रही है। इस हद तक एक दूसरे से मुतनफ़िर है कि देखने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, साथ रहना भी नहीं चाह रहे, कह रहे बस अब नहीं रह सकते साथ। तो क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये नतीजा आ गया? इसकी वजह ये थी कि हर इंसान तैयार नहीं होता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो सच को सुन ले और मान ले। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप किसी को सच बोले कि वाकई तुम्हारे अंदर ये बुराई है तो वो उसको मान भी ले कि हाँ मेरे अंदर ये बुराई है। अव्वल तो ये सुनना उसके लिए सख्त है, फिर उसका मानना उसके लिए सख्त है, चाहे वो भी। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे आपसे, आगे कोई ये कहे कि आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं और आप जब भी बात करती हैं बदबू आती है बहुत, इसलिए आप प्लीज़ या तो दांत निकाल कर आए या कुछ ब्रश व्रश करके आ करें, आपसे बदबू आती है, आपको कैसा लगेगा? नहीं जी बदतमीज़ आती है, इसको बोलना भी नहीं आता। कुछ देर तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये, और थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे कि है या नहीं है। फिर अगर होगा भी तो कहेंगे हाँ नहीं नहीं तो बड़ा ख़तरनाक है, जर्म्स होंगे वो मेरे पेट में जाएंगे, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे बॉडी को तकलीफ हो सकती है और बाकी लोगों को तकलीफ हो रही, तो मुझे दांत निकाल लेना चाहिए। लेकिन फिर आप बात देखेंगे उसको उस तरीके से बोलना चाहिए था ना, उसने कैसे मुझे बोला, मेरे सामने सबके सामने बोल दिया या इस तरह मुझे बोल दिया और मैं इंसल्ट हो गई। लेकिन आप दांत निकलवा लेंगे जाके, क्योंकि उसके ख़तरनाक उसके नुकसान हैं खुद बाप की बॉडी के लिए भी और लोगों के लिए भी। जबकि ये बात सही थी लेकिन आपने पहले मरहले में कबूल नहीं की, आपने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसी तरह मियाँ बीवी की ज़िंदगी में भी है, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को डेवलप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को उनके ऐप बताएं ताकि वो ऐप ख़त्म हो, तो ये पहले मरहले का काम नहीं है। ऐप बताना कोई कमाल नहीं है कि आप सामने वाले को उसके ऐप बताना शुरू हो जाए। आप सबसे पहले ये देखें कि आप में क्या क्या खामियां हैं, मुझ में क्या क्या बुराई है, मुझ में क्या क्या कमी पाई जाती है, उसको फोकस करें, उसको हाईलाइट करें और उसकी लिस्ट बना लें कि मुझ में ये छोटी से छोटी ऐप ये बड़ी से बड़ी ऐप ये, तो आप देखेंगे इतनी सारी हैं कि उसी पर काम करना शुरू हो जाए तो पता नहीं कितना अर्सा लगे इसको ठीक होने में। तो चलिए ठीक है, मैं कोई एक को मैं पिक करती हूँ, आगे सोचो मैं एक को दे